ಪರಮಂಗಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಟೆಂಪಲ್ 9th June 2007. Hare Krishna.
And
topic of the lecture is practicing Bhakti Yoga. Hare Krishna.
Yog Adesham
Upasadya
Bharyantah Munivratah Samahita Dhiyah
Sarve
Abhyas Adritah Yogadeshamupasadya
Yogadeshamupasadya
Dharayanto Munivratah
Dharayanto Munivratah
Samahita Dhiya Sarva
Samahita Dhiya Sarva
Etat Abhyasadadrata
Etat Abhyasadadrata
Anuvad Dohraayenge हे राजपुत्रो,
हे राजपुत्रो,
मैंने तुम्हें
पवित्र नाम
जपकी
योग पद्धति
बतला दी है।
तुम सब
इस सूत्र को
अपने मनों में
धारण करते हुए
इस पर
दृढ़ रहने का
व्रत लो
जिससे
तुम
मुनि बन सको।
तुम्हें चाहिए
कि
मुनि की भांति
मौन धारण करके
तथा
ध्यान पूर्वक
एवं
आदर समेत
इसका पालन करो।
तात्पर्य हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान धारणा आसन आदि करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन ग्रहण करके अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है। हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान हैं कि इस योग में उन्हें कर पाना कठिन है, किंतु भक्ति योग की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए वरन अन्य युगों के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस योग पद्धति का उपदेश शिवजी द्वारा महाराज प्राचीन परिषद के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति योग पद्धति कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। भगवद गीता में 6:47 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत्कथा अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। योगियों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करता है वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। सर्वोच्च योगी वही है, वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है और अब इस कृष्णा भावना आंदोलन में चालू है। इस प्रसंग में मुनि व्रता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ है केवल कृष्ण कथा की बात करना या कृष्ण का गुणानुवाद। यह मौन महाराजा अम्बरीश जैसा है, सावे मना कृष्ण पदारे विंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजा अम्बरीश ने सदैव भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हीं का गुणानुवाद किया। भागवत 9:4:19। हमें चाहिए कि हम इस जीवन का उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने में ना करें। हमें या तो कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, यही मुनि व्रत कहलाता है। बुद्धि को प्रखर होना चाहिए, समाहित धीय तथा कृष्ण भक्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए। ये तत् अभ्यास साधरता शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो यह भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। ओम अज्ञानस्तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भगवत कक्षा में। तो ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव ने राजा प्राचीन परिषद के पुत्र उपचेतस को ज्ञान दिया, उनको स्तुति सुनाई, और स्तुति समाप्त करने के बाद अब भगवान शिव उपचेतस को स्तुति की महिमा बता रहे हैं। पिछले दो श्लोकों से स्तुति की महिमा का गान हो रहा है और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इस स्तुति का जप करते समय इनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इसका पूरा वो लाभ उठा सके। तो योग आदेश उपासधार्यंतो मुनिव्रता समाहित धिया सर्व एतद अभ्यसाद्रता। बोले योग आदेश, जो मैंने आपको ये स्तुति का जप करने को बताया है ये योग है, ये योग का आदेश आपको मैंने दिया है। यानी कि जो मैंने स्तुति आपको गाकर सुनाई है इसी का आप जप करेंगे तो ये योग हो जाएगा। आप इसी स्तुति का जप करके अपने आप को भगवान से जोड़ लेंगे। योग आदेश है उपासाध्य। अब आपको क्या करना है, उपासाध्य। उपासाध्य का प्रभुपाद जी ने अर्थ लगाया है निरंतर पढ़ते हुए, यानी कि निरंतर जप करना है इसका। ये जो मैंने आपको स्तुति सुनाई है इसका निरंतर जप करना है। फिर किस ढंग से जप करना है निरंतर, तो उसमें पांच इन्होंने स्थितियां बताई हैं कि इस योग के आदेश का कैसे पालन करना है। सबसे पहले बताया उपासाध्य, इसका निरंतर जप करना है। दूसरा बताया धार्यंतो, इसको अपने अंतःकरण में धारण कर लो, मन में, अंतःकरण में, बिल्कुल जिसे कहते हैं डीपेस्ट कोर ऑफ योर हार्ट, एकदम अंतःकरण में इस स्तुति को धारण कर लो। और तीसरा मुनिव्रता, संकल्प ले लो कि हर परिस्थिति में मैं इसका जप करूंगा, मुनि बनूंगा। और प्रभुपाद इसमें लेने के ये भी संकल्प लेना कि हमेशा मौन रहूंगा, यानी कि अगर बोलूंगा तो यही स्तुति बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो केवल कृष्ण का गुणगान करूंगा अन्यथा नहीं बोलूंगा, ये व्रत ले लो। तीन, चौथा क्या है देख के बताइए श्लोक में, चौथा क्या बताया, चौथा और क्या करना पड़ेगा उससे पहले, समाहित ध्या, एकाग्र बुद्धि से पूरे ध्यान पूर्वक अटेंटिवली इसका जप करना है, ध्यान पूर्वक इसका जप करना है। और पांचवा है आद्रता, आदर पूर्वक इसका अभ्यास करना है। यानी कि अब भगवान शिव जी ने अपने शिष्यों को भक्ति लता बीज दे दिया, भक्ति लता बीज दे दिया, मंत्र का जप बता दिया। अब बताया है इस भक्ति लता बीज को आपने कैसे विकसित करना है, तो इसके अभ्यास के लिए आपको पांच तरह के अभ्यास करने पड़ेंगे कि क्या है,
कि इसका निरंतर जप करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, इसको अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ेगा। नंबर तीन, संकल्प लेना पड़ेगा कि कोई व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी, केवल कृष्ण कथा करनी है। और नंबर चार, बहुत एकाग्रता से इसका जप करना पड़ेगा। और नंबर पांच, बहुत ही आदर पूर्वक इसको ग्रहण करना होगा। तो ये पांच अगर हम सावधानियां बरतेंगे इसके अभ्यास करने में, तो ये जो बीज आपको प्रदान किया गया है, ये बीज पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जप करना ही योग है, और इसका बता रहे हैं कि आज के कलयुग में हम हठ योग नहीं कर सकते। भगवान श्री भगवद गीता के छठे अध्याय में बता रहे हैं कि ध्यान योग करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वह है शुचौ देश, और कि आपको एक पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। इस कलयुग में कोई भी स्थान पवित्र नहीं है, सबके सब दूषित हैं। तो शुचौ देश जाकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो पहले ही दो कंडीशन में हम फेल हो जाएंगे। जैसे आर्मी में टेस्टिंग के लिए बताया जाता है ना, किसी को आर्मी में एंट्री करना है कि कम से कम इतनी हाइट होना चाहिए और इतना विजन होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का उतना हाइट नहीं है, जितना विजन नहीं है, तो आगे के वो टेस्ट दे ही नहीं सकता, पहली बारी में उसको रिजेक्ट हो गया। इसी ढंग से हम लोग पहले में रिजेक्ट हो गए शुचौ देश हो कि घर छोड़ के जाओ पवित्र स्थान में। पहली बात तो हम घर छोड़ेंगे नहीं, दूसरी बात कोई पवित्र स्थान है भी नहीं, तो वो पहले में पार हो गए। दूसरा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन असंभव। तो हम इस कलयुग में ध्यान योग का पालन नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए हमें कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, हरे कृष्ण कर रहे हैं, वो लोग देखिए जप करते हैं, उनके गुरुजी ने कुछ ऐसा मंत्र बताया है जिसमें खाली पांच शब्द हैं और कुछ नहीं बताते, चुपचाप किसी को नहीं बताना पांच शब्द कौन से हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक ध्यान लगाना है सुबह सुबह, केवल पांच मिनट ध्यान लगा लो, आप पता नहीं कौन से जगत में पहुंच जाते हैं और वहां से घूम फिर के फिर आप वापिस आ जाते हैं, है ना। तो बहुत आनंद में है सब। तो कहते हैं तो बड़ा आसान है और ये बहुत तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कोई भ्रम में नहीं रहना। कर ही नहीं सकते, ध्यान योग कलयुग में असंभव है, नहीं कर सकते। तो पूर्ण रूप से हमें इसका आश्वासन होना चाहिए। फिर तभी बताया है हरे नाम एव केवलम। केवलम का अर्थ है केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास होना चाहिए। फिर ये बताया उन्होंने कि ये जो भक्ति योग है ये केवल कलयुग में ही नहीं है, भक्ति योग सनातन है। वास्तव में भक्ति योग का अर्थ है सनातन धर्म, क्योंकि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, जीव और भगवान का संबंध सनातन है, और जीव और भगवान के संबंध को ही भक्ति योग कहते हैं। ये सनातन धर्म है। तो चाहे सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, प्रत्येक युग में भक्ति योग ही है। और योग का अर्थ ही भक्ति योग है। योग का अर्थ है भगवान से अपने आप को जोड़ना, और बिना भक्ति योग के हम भगवान अपनी चेतना को भगवान की चेतना से नहीं जोड़ सकते। तरह तरह के योग बताए गए हैं। अगर आप योग की सीढ़ी देखेंगे, योगा लेटर देखेंगे, तो शुरुआत होती है कर्म कांड से, फिर होता है कर्म योग, फिर आता है निष्काम कर्म योग, फिर आता है ज्ञान योग, फिर होता है ध्यान योग, और फिर अंत में है भक्ति योग। तो भक्ति योग से नीचे की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो एक सीढ़ियां हैं। भगवान से हमें अपने आप को जोड़ने के लिए भक्ति योग का ही पालन करना पड़ेगा, भक्ति योग की स्थिति पर ही पहुंचना पड़ेगा। ये तो कलयुग में हमारे पर विशेष कृपा है कि हम सीधा भक्ति योग की विधि का पालन कर पा रहे हैं, अन्यथा हमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करते हुए फिर भक्ति योग में आना पड़ता। तो योग का अर्थ ही भक्ति योग, कि पूर्ण रूप से हम अपने आप को भगवान से जोड़ सके। और ये भक्ति योग सनातन है, क्योंकि जीव सनातन है, भगवान सनातन है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं, श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं अपनी टीका में, कि कलयुग में सिद्धि प्राप्त करना सत्ययुग में सिद्धि प्राप्त करने से बहुत ज्यादा सरल है। हालांकि सत्ययुग में भी ये हरिनाम जप की विधि थी, हर युग में हरिनाम जप की विधि रहती है, लेकिन कलयुग में इसका जप करना और इस जप करते हुए सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। क्यों? क्योंकि सत्ययुग में जो जीवात्माएं थी वो पूर्ण रूप से धर्म का पालन करती हैं। जब पूर्ण रूप से वो धर्म का पालन करते हैं तो उनके ऊपर ये तीन ताप, जो तीन क्लेशों का प्रभाव नहीं होता, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक क्लेश उनको नहीं सताते, तो बहुत संतुष्ट रहते हैं वो। उनकी आयु भी लंबी होती है, उनकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है, और उनको कोई कष्ट भी नहीं होता। तो जब उनकी स्थिति इतनी अच्छी स्थिति होती है तो उनको बताया जाए कि केवल हरि नाम का जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। केवल इस जीवा को हिलाइए और दो होठों को हिलाइए, बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसको स्वीकार नहीं करते, ये कैसे संभव है? क्योंकि उनको कोई क्लेश नहीं सता रहे, तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए वो ध्यान योग का सहारा लेते हैं और वनों में जाकर तपस्या करते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति है, पदम पदम यत्र विपदम, कदम कदम पर खतरा है, क्लेश हम सबको सता रहे हैं, संसार दावानल, एक जलते हुए इस लाइक अ फॉरेस्ट फायर, दावानल जैसे जंगल में आग लगी हुई है, वैसे हम सबकी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ही असहाय होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जब बहुत ही असहाय होकर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान निश्चित रूप से जीव की इस पुकार को सुनते हैं। भगवान की यह प्रकृति है, ये नेचर है भगवान की, कि भक्तों को दुख को हर लेते हैं। भगवान की सबसे, भगवान के बहुत से गुण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख गुण है वो है भक्त वत्सल। तो अपने भक्तों में कृपा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई भी जीव असहाय होकर जब भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसकी सुनते हैं, तुरंत। वैसे तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन कोई असहाय अवस्था में पुकारता है तो भगवान तुरंत उसकी सुनते हैं। तो कलयुग में हम हर परिस्थिति में असहाय हैं, हमें पूर्ण रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए हर परिस्थिति में, और असहाय होकर भगवान को पुकारना चाहिए। तो तुरंत हमारा भगवान से मिलन होगा, भगवान के साथ हमारा योग हो जाएगा, इतना सरल है। इसलिए श्री स्वामी महाराज ने बताया कि कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमारे ऊपर तरह तरह के दुख आ रहे हैं, दुख तरह तरह से अवतार लेके हमारे सामने आते हैं, तरह तरह से। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा दुख है, वास्तव में सभी बहुत दुखी हैं, सभी के सभी। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, वैसे तो भगवान ने गीता में बताया ही है कि भौतिक जगत दुखालय है ना। अगर हमें शास्त्रों की बात पर विश्वास नहीं भी होता तो अपने कॉमन सेंस का सहारा लें, बुद्धि का, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है हमारे में, उसका हम सहारा लें और सर्वे करना शुरू करें कि एक संसार में क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुखी हो। धनी को ले लें, निर्धन को ले लें, महलों में रहने वालों को ले लें, झोपड़ी में रहने वालों को ले लें, युवा को ले लें, बूढ़े को ले लें, स्त्री को ले लें, पुरुष को ले लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीय अमेरिकन रशियन, सारा सर्वे कर लें, और अगर संभव हो तो दूसरे ग्रहों का भी सर्वे कर लें, स्वर्ग लोक का, महालोक, तपोलोक, जन लोक, ब्रह्मा जी के लोक, सबका सर्वे कर लें, तो हमें एक जीव भी सुखी नहीं मिलेगा, एक जीव भी। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में भगवान उद्धव को संदेश दे रहे हैं, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री गौर निताय जी की जय, भोलेनाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का लोक है वो भी अमंगलकारी है, ब्रह्मा जी के लोक में भी अमंगल है, शुभ नहीं है वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक भी इस भौतिक सृष्टि में ही आता है, उच्चतम लोक है, वहां भी अमंगल ही अमंगल है, और स्वर्ग लोक में तो द्वेष भय असुरक्षा है। तो इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है, कोई भी जीव, तो सबके सब दुखी हैं। तो ऐसे दुखी होकर असहाय अवस्था में जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुरंत हमारी पुकार को सुनते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए कलयुग में भक्ति करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है, और कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा ही हम भक्ति योग कर सकते हैं। तो इसलिए ये योग का जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है तो हमें उपासाध्य इसका निरंतर जप करना है, निरंतर कीर्तनीय सदा हरि। पिछले श्लोक में भी यह बताया गया था कि ध्यायन्तश्च असकृत हरिम, कि ध्यान करते हुए असकृत करते निरंतर हरिम श्री भगवान का, कि निरंतर नॉन स्टॉप भगवान का हमें जप करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया 16 माला का जप करना, 16 माला से अधिक जप करना कोई नाम अपराध नहीं है, है ना। ये गलत हमें ना रहे कि 16 माला से अधिक जप करेंगे तो नाम अपराध हो जाएगा, एक बार हमें याद आ रहा है, हमारे एक गुरु भाई हैं, गुरु महाराज जी के साथ मॉर्निंग वॉक में गए। महाराज ने बोला चलो मॉर्निंग वॉक मेरे साथ चलो, साथ में चले। तो महाराज जप कर रहे थे, वो साथ साथ ऐसे चल रहे थे। तो महाराज ने बोला अभी जप कर लो। बोले महाराज सोलह माला हो गई है कि मैं सोलह माला कर चुका हूँ, क्यों जप करूंगा। तो ऐसा नहीं है, निरंतर जप करना है। सोलह माला तो कम से कम है। आवाज नहीं आ रही, वहां रख सकते
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो निरंतर हमें जप करना है, ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए दोहरा रहा हूं दोबारा से। तो पीछे लोग बोलेंगे हमें सुनाई नहीं दिया। सोलह माला का जप कम से कम है, और सोलह माला से अधिक जप करना अपराध नहीं माना जाएगा। गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इसको हमें निरंतर जप करना है। कैसे? धारयंता, अंतःकरण में धारण करते हुए। अब ये कहना तो आसान है कि इसका हम निरंतर जप करें, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है कि केवल हरि नाम के द्वारा ही हम भगवान के साथ संबंध को स्थापित कर सकते हैं, और ये ज्ञान कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, और ये ज्ञान कि भौतिक जगत दुखालय है, ये सबको हम सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं किया। क्योंकि अगर ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर चुका होता तो हमारी सारी की सारी क्रियाएं बदल गई होती है ना। तो इसका मतलब ज्ञान अंतःकरण में प्रवेश नहीं किया, अभी तक हमने इसको रियलाइज नहीं किया। ये केवल ज्ञान के स्तर पे है, शुष्क ज्ञान। और कई बार ये ज्ञान शुष्क रहता है और अंदर से हम इसको अंतःकरण में स्थित नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा बोझा बन जाता है, और ये हमारे फ्रस्ट्रेशन का, कुंठा का कारण बन जाता है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी हम गलती कर रहे हैं, तो बहुत कुंठा होती है, क्या किया जाए। फिर सुनते हैं बहुत ही जगत दुखालय है, कृष्ण की शरण ग्रहण करो, सब कुछ प्रयास करने के बाद फिर नहीं कर पाते, फिर हम गलती करते हैं और निरंतर जप नहीं कर सकते। तो कैसे इसको हम अंतःकरण में स्थित करें? तो देखिए, ये अंतःकरण में स्थित तभी होगा ये ज्ञान, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर होना पड़ेगा। भक्ति योग का अर्थ ही यही है कि हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर रहें। हठ योग में हम अपने प्रयासों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भक्ति योग का अर्थ है पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण के भक्तों की कृपा पर निर्भर रहना, वैष्णवों की कृपा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना, अपने आप को पूरा असहाय मानना, असहाय मानते हुए पूर्ण रूप से हम कृपा की याचना करते रहें। और जब हम कृपा की याचना करेंगे तो पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से ही ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होगा, हम इसका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो अगर हम सब दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं या करने वाले हैं, यानी कि हम प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़ गए हैं, तो प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़ने का अर्थ है कि हम सबको ये प्रयास करना है कि हमें सभी वैष्णवों का विनम्र सेवक बनना है। जब तक हम वैष्णवों के विनम्र सेवक नहीं बनेंगे तब तक ये ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान रहेगा। केवल वैष्णवों की विनम्र सेवा करने से ही हम इसको अपने अंतःकरण में स्थित कर पाएंगे। वैष्णवों की सेवा करके ही ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होगा, इसका हमें साक्षात्कार होगा। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें विनम्र बनना है और विनम्र बनकर वैष्णवों की सेवा करनी है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि की रचना केवल हमें विनम्र बनाने के लिए ही की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दूषीकरण है। जब मैंने भगवान से विमुख होकर आनंद प्राप्त करने का सोचा, इच्छा प्रकट की, तो हमने भगवान से स्पर्धा की, कंपटीशन किया। अब सोचकर देखिए, कल्पना कीजिए किसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जैसा तुच्छ जीव कंपटीशन कर रहा है, स्पर्धा कर रहा है। तो भगवान ने बोला ये बहुत स्पर्धा कर रहा है मेरे से, इसको विनम्र बनाना पड़ेगा। तो ये भौतिक सृष्टि की रचना की, करो कॉम्पिटिशन, देखते हैं कितना आगे बढ़ोगे। और भगवान ने माया देवी को आदेश दिया कि पूर्ण रूप से इसको विनम्र बना दो। गले के ऊपर हमारा त्रिशूल रखा रहता है और मार मार के कैसे नहीं विनम्र बनोगे आप? तो विनम्र तो बनना ही पड़ेगा, या तो दुर्गा देवी की त्रिशूल के आगे विनम्र बन जाए, या गुरु के त्रिदंड के आगे विनम्र बन जाए, च्वाइस हमारी है। अगर गुरु के आगे विनम्र नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, समय की बात है, कुछ ही समय की बात है, माया देवी हमें पूर्ण रूप से विनम्र बना देगी। हम जैसे तुच्छ जीवों को छोड़ो, बड़े बड़े महादेव इंद्र ब्रह्मा शिव जी, उन्होंने भी भगवान से कभी जब स्पर्धा करने की सोची है तो भगवान ने तुरंत उनको विनम्र बना दिया है। कि हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि कृष्णा इज अ ट्रांसडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इंद्र के विषय में हम सब जानते हैं कि कैसे भगवान ने उनको विनम्र बनाया गोवर्धन पूजा करके, है ना। शिवजी के एक भक्त थे बाणासुर, बाणासुर की हजार भुजाएं थी और उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती थी। क्या फ्रस्ट्रेशन रहती थी? कि कोई मुझे हरा नहीं पाता। ये असुरों का चेतना होती है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ही रहेंगे। तो असुर फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे कोई हरा नहीं पा रहा, मैं सबको हरा देता हूं, मुझे कोई हराने वाला नहीं है। तो शिवजी ने बोला समय आएगा, चिंता मत करो। तो ऐसा एक समय आया कि भगवान श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ। तो उस बाणासुर को यह वरदान प्राप्त दिया था शिव जी ने कि उसकी रक्षा स्वयं शिव जी करते थे द्वारपाल बनके। तो जब श्री कृष्ण से उनका युद्ध हो रहा था तो शिव जी भी उनके सामने आए गए युद्ध करने के लिए कृष्ण से। शिव जी ने कृष्ण से युद्ध किया और युद्ध करते हुए शिव जी ने अपने उस असुर की रक्षा करने के लिए एक अस्त्र छोड़ा जिसका नाम था शिव ज्वर। तो उस शिव ज्वर को जब छोड़ा तो बहुत ज्यादा ताप हो गया। तो देखिए वो सोच रहे थे इस ताप से भगवान घबरा जाएंगे। तो भगवान ने तुरंत क्या छोड़ा? नारायण ज्वर छोड़ दिया और नारायण ज्वर में उसको अत्यधिक उसको शीत कर दिया, ठंडा कर दिया। तो जब शिव ज्वर का प्रभाव खत्म होने लगा तो शिव ज्वर दोबारा शिव जी की शरण में गया, बचाओ बचाओ। शिव जी कहते मैं नहीं कर सकता कुछ, अब मेरे वश की नहीं है। जिन्होंने छोड़ा अस्त्र वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो शिव ज्वर फिर कृष्ण की शरण में गए और फिर उन्होंने प्रार्थना की, बोले आज मुझे मालूम चल गया कि सर्वशक्तिमान कौन है, इनको ऐसे ही महादेव कहते हैं लेकिन वास्तव में आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो शिव जी को भी भगवान ने विनम्र बना दिया। फिर बाद में भगवान शिव ने प्रार्थनाएं की कि आप ही सब कारणों के कारण हैं, सभी शक्तियों की स्रोत आप ही हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? कुछ भी स्थिति नहीं है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से, हमारी कुछ भी उपलब्धियां नहीं है। कभी भी जीव को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, देखो मेरा ज्ञान, देखो मेरा सौंदर्य, देखो मेरा धन, देखो मेरी शक्ति, कुछ भी नहीं है। कभी भी इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। हम सब बड़े जीवों में केवल एक ही उपलब्धि है और वो ये उपलब्धि है कि हम इस भारी भरकम मृत शरीर को ढोए हुए हैं। बस ये शरीर मृत है, ये शरीर हमेशा ही मृत रहता है, डेड मैटर है ये शरीर, ये स्थूल शरीर डेड है। तो अननेसेसरली बिना किसी आवश्यकता के हम इसको ढोए हुए हैं, बस यही हमारी उपलब्धि है और कोई उपलब्धि नहीं है। एक ये स्थूल शरीर है और इसके अंदर का सूक्ष्म शरीर है जिसे पता नहीं कितनी कितनी अतृप्त इच्छाएं हैं और झूठा अहंकार है, पर्वत के समान हमारा झूठा अहंकार। उस दिन कल हम प्रार्थना में पढ़ रहे थे पर्वत के समान और हीरे की तरह कठोर झूठा अहंकार। तो ऐसा हमारा झूठा अहंकार है, अतृप्त इच्छाएं हैं और ये स्थूल शरीर, ये भार हम उठाए हुए हैं और इसी भार को लेकर हम बड़े गर्वित महसूस करते हैं अपने आप को। जन्मों जन्मों तक ये भाव उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। आप क्या समझते हैं ये कोई उपलब्धि है? ये तो मूर्खता है, इस बोझे को उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पास विनम्र बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे ये ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान रहेगा और हम कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा है त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि। अगर आप निरंतर कीर्तन करना चाहते हैं, जो शिव जी का भी ये आदेश है कि आपको उपासाध्य निरंतर जप करना होगा, तो और कोई उपाय नहीं है। हमें घास के तृण से भी अधिक विनम्र बनना पड़ेगा, सबको मान देना पड़ेगा और मान की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी और पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना होगा, बनना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और हम इस ढंग से विनम्र नहीं बनेंगे वैष्णवों की सेवा करके तो माया देवी हमें विनम्र बना देगी और वो बहुत ज्यादा कष्टप्रद होगा और वैष्णवों की सेवा करके विनम्र बनेंगे तो बहुत आनंददायक होगा। तो ये चॉइस हमारे पास है। हम देख सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने कैसे वैष्णवों की सेवा की। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्तों के कपड़ों को धोते थे, भक्तों को चंदन लगाते थे और फिर भक्तगण ब्राह्मणगण उनको आशीर्वाद देते थे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। भक्तों के आशीर्वाद पर ही हम निर्भर हैं पूर्ण रूप से। भक्तों को हम प्रसन्न कर सकें ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हम भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे ये ज्ञान ऐसे का ऐसे ही रहेगा और हमारे इस संसार में जो इंद्र तृप्ति की रुचि है कभी समाप्त नहीं होगी। भागवतम के तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि और विदुर जी का वार्तालाप है। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को शिक्षा दी और बताया इस भौतिक जगत की क्या प्रकृति है। ये भौतिक जगत अस्थाई है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और उसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा कि भौतिक जगत बहुत बड़ा भ्रम है लेकिन इसका साक्षात्कार हम तभी कर पाएंगे जब हम वैष्णव की सेवा में जुड़ेंगे। जब तक हम वैष्णव की सेवा में नहीं जुड़ेंगे हम इस भौतिक जगत जो कि बहुत बड़ा भ्रम है इसको सत्य समझते रहेंगे। बहुत गहरा भ्रम है हमारे ऊपर, बहुत गहरा। तो इस भ्रम को काटने का केवल एक ही तरीका है कि हम भक्तों की सेवा करें विनम्रता पूर्वक, अन्यथा जन्मों जन्मों तक हम इस भ्रम में फंसे रहेंगे और इसको काट पाना अति दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि इस ज्ञान को हम अंतःकरण में स्थित करें तो विनम्र सेवक बनना पड़ेगा। देखिए भक्ति का अर्थ है कि हम श्रद्धा को बढ़ाएं। भक्ति का अर्थ है कि हमारी श्रद्धा बढ़े और श्रद्धा बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए, प्रेम तक। जो कृष्ण प्रेम है वो श्रद्धा का एक जिसे कहते हैं कंडेंस फॉर्म, क्या बोलेंगे उसको, घनीभूत रूप है। यानी कि यही श्रद्धा घनी होते 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 प्रेम में विकसित होती है। तो भक्ति जब हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ है श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगात मम वीर सम्मेलो। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें नापना चाहिए क्या मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है। भक्तों में, शास्त्रों में, गुरु में, कृष्ण में, श्रद्धा में निरंतर विकास होना चाहिए। प्रगति का अर्थ है श्रद्धा में विकास। तो श्रद्धा निरंतर बढ़नी चाहिए। साधु संघ का एक ही अर्थ है कि श्रद्धा में विकास हो। अगर हम साधुओं का संग कर रहे हैं लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ रही है इसका मतलब कुछ गलती हो रही है, हमें साधुओं का संग करना नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक ये श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तब तक ये अंतःकरण में ज्ञान स्थित नहीं होगा। और साधु संघ का सरल अर्थ है वैष्णव सेवा। तभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। अगर हमें निरंतर जप करना है तो रुचि चाहिए उसके लिए। जबरदस्ती हम निरंतर जप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए नाम में रुचि चाहिए और रुचि तभी उत्पन्न होगी जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे। तो इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि किस ढंग से हमें साधुओं का संग करना चाहिए। देखिए गुरु की कृपा से ये भक्ति लता बीज तो हमें प्राप्त हो जाता है लेकिन इस बीज को अगर विकसित करना है तो इसके लिए हमें अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा। तो अनुकूल वातावरण जब तक नहीं देंगे अच्छे से अच्छा बीज भी विकसित नहीं होगा। बीज तो ये टॉप मोस्ट क्वालिटी का है, जो ये भक्ति लता बीज है हम सब प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं, इससे उत्तम क्वालिटी का बीज हमें नहीं मिल सकता। तो बीज तो हम सबको प्राप्त हो गया है, अब निर्भर करता है हम इसका सिंचन कैसे करें। तो देखिए भागवत कक्षा में हम प्रतिदिन आते हैं और कई तरह के श्रोता हैं। वक्ता तो एक ही होता है लेकिन श्रोता बहुत होते हैं और प्रत्येक श्रोता के ऊपर वक्ता की वाणी का अलग अलग प्रभाव होता है। तो कैसे प्रभाव होता है ये निर्भर करता है कि जो सुन रहे हैं भक्तगण उनके अंदर कितनी मात्रा में ये प्रगाढ़ इच्छा है कि मुझे भक्तों की सेवा करनी है। जितनी मात्रा में प्रगाढ़ इच्छा होगी कि मुझे भक्तों की सेवा करनी है उसी मात्रा में ये ज्ञान उनके अंतःकरण में प्रवेश करेगा। तो अलग अलग सबकी इच्छा है। कई भक्तगण विनम्र अवस्था में हैं और विनम्र अवस्था में श्रवण करते हैं और भक्तों की सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो उनको एक ही बात हृदय सरल होते तुरंत असर कर जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी विनम्र नहीं हुए हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माया देवी अभी और मार मारेगी हमें। है ना, तो झूठे अहंकार में है। तो श्रवण भी कर रहे हैं, निरंतर अध्ययन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा। और तब तक जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, हम इस भक्ति लता बीज को अनुकूल वातावरण नहीं दे रहे हैं विकसित होने के लिए। तो जब तक इस भक्ति लता बीज को अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, ये फलीभूत नहीं होगा और ये फिर केवल बाही अवस्था में रह जाएगा, एक्सटर्नल रह जाएगा। तो ये है किस ढंग से हम इसको अंतःकरण में धारण करें और अंतःकरण में धारण करके निरंतर जप करें। अब बताया जा रहा है मुनि व्रता, संकल्प लेना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में इसका जप करना ही करना है, दृढ़ता करना पड़ेगा। इसमें बोला गया अभ्यास, अभ्यास का अर्थ ही है कि इच्छा के विरुद्ध अभ्यास करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इच्छा नहीं होगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी आएंगी, अभ्यास करना पड़ेगा हर परिस्थिति में, तो दृढ़ता हमें रखनी पड़ेगी। हम सब गुरु वैष्णव और अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, तो दृढ़ता हमें रखनी पड़ेगी। तो कैसे आएगी ये दृढ़ता? दृढ़ता आती है शुद्धता से। जब तक हमारे में शुद्धता नहीं होगी, दृढ़ता नहीं आएगी। और कैसे आएगी शुद्धता? शुद्धता आती है कृपा से, आचार्यों की वैष्णवों की कृपा से। तो देखिए कि हर परिस्थिति में हम कृपा पर निर्भर हैं, हर परिस्थिति में। तो कृपा पर निर्भर होकर कृपा की याचना करेंगे तो हमारे में शुद्धता आएगी और फिर हमारे में 16 माला का जप, 4 नियमों का हर परिस्थिति में पालन करने की दृढ़ता आएगी। श्री प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद 4 नियमों को पालन करने की दृढ़ता कैसे आए? तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप 4 नियमों का पालन भी दृढ़तापूर्वक नहीं कर पा रहे, देन यू आर लाइक एन एनिमल, पशु समान है आप, करना ही है। क्या मतलब है दृढ़ता नहीं आएगी? 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना ही है, और हम 4 नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ यह है कि कुछ गलती हो रही है हमसे, सही ढंग से साधुओं का संग नहीं कर रहे, विनम्र चेतना में नहीं आ रहे हम, विनम्र बनना पड़ेगा। ये भगवान के प्रबंध है हमें विनम्र बनाने के लिए, खूब पिटाई हो रही है हमारी, विनम्र बनने के लिए, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। रास्ता केवल यही है हरि नाम का जप, रास्ता केवल यही है 4 नियमों का पालन। नहीं कर पा रहा और कृपा की याचना करनी पड़ेगी। अगर पतन होता भी है तो पतन का अर्थ वो है कि गिरने के बाद हम खड़े नहीं हुए, अगर पतन हो गया दोबारा से उत्साह से खड़े होइए, फिर से प्रयास कीजिए, फिर से कृपा की याचना कीजिए, फिर से गिर गए और उत्साह से खड़े होइए, और उत्साह से सेवा में जुड़िए, और कृपा की याचना कीजिए, फिर गिर गए फिर खड़े होइए, और कोई विकल्प है ही नहीं, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि कुछ और शॉर्टकट हो बताइए, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभ्यास, प्रयास, 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 बस हर बार इन प्रयासों को और सुधारना है, और अच्छे ढंग से कृपा की याचना करनी है, और भक्तों की सेवा करनी है। निश्चित रूप से भगवान हमारे दृढ़ प्रयासों को देखकर सुनेंगे। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर किसी भक्त ने यह ठान ली है कि भक्ति योग ही सर्वोत्तम विधि है और हर परिस्थिति में भगवान का श्रवण कीर्तन करूंगा, तो श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसे भक्त को अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो हमें भगवान का ऐसे प्रिय बनना है कि हम कृष्ण अपने गोद में हमें उठा लें। तो ये परीक्षा का समय होता है, हर परिस्थिति में हमने इस दृढ़ता को दिखाना है, तो अपने ढंग से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और फिर बताया गया है कि मुनि का अर्थ है कि जो हमेशा मौन रहे, बोलना है तो केवल कृष्ण कथा, अन्यथा नहीं। तो ये हम सब बदजीवों की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इस संसार में प्रत्येक जीव यही कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, हर किसी को यही कंप्लेंट है कि मेरी कोई नहीं सुनता। बात सही है, क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है तो सुनेगा कौन, हर किसी को बोलने में रुचि है कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, तो हर कोई बोल रहा है, बोल रहा है कि सुनना कोई नहीं चाह रहा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको रोकना पड़ेगा। देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आए अपने आप को बदलने के लिए, ये मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, यहां पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, कि अच्छा लगता है हफ्ते में एक दो बार आके प्रसाद खा लिया, थोड़ा दर्शन कर लिया, नाच लिया कूद लिया, बढ़िया अच्छा है, और बाहर जाके जो मर्जी करो। प्रभुपाद कहते हैं चर्चेनियन अप्रोच नहीं चलेगी, जैसे क्रिश्चियंस की चर्चेनियन अप्रोच है कि हर संडे को आए कि बता दिया अभी ये पाप कर दिया मैंने, ठीक है फिर चले गए, फिर पाप करना शुरू कर दिया, हफ्ते में एक बार आना जरूरी है, नहीं इस ढंग से औपचारिकता नहीं चलेगी, है ना। हम यहाँ पे आए अपने हृदय को बदलने के लिए, तो बदलना पड़ेगा। तो अभी ये मेरी नेचर है जी, मैं बहुत बोलता हूँ, इसको बदलना पड़ेगा। अगर बोलना ज्यादा है तो केवल कृष्ण कथा करो, अन्यथा नहीं बोलना, क्योंकि जब हम ग्राम्य कथा करते हैं, प्रजल्पा जिसे कहते हैं, प्रजल्पा का अर्थ है कि ऐसी वार्ता जिसके में कोई निर्णय नहीं निकलता, कोई निर्णय नहीं निकलता, ऐसी बातें जिसका कोई अंत है ही नहीं, निर्णय निकलता ही नहीं, ऐसे बेकार की बातें हैं। कोई निर्णय तो केवल एक ही है, कृष्ण भक्ति। तो ऐसी बातें जिसकी कोई निर्णय नहीं है वो प्रजल्पा है। तो जब कोई ऐसी बात करते हैं तो इससे हमारा मन अशुद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को क्या बताया, असर्द वार्ता वैश्य विसाज मति सर्वस्य हरणी, कि ये जो असत वार्ता है यानी कि असत विषयों के विषय में हम बातचीत करते हैं, ये वैश्या की तरह है, इट्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, और ये आपकी मति को हर लेती है। तो हमें बहुत बचना चाहिए प्रजल्पा से। अगर हमने प्रजल्पा कर रहे हैं भक्ति करते हुए तो हमारा पतन निश्चित है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, समय की बात है, बस केवल समय की बात है। ये एक विज्ञान है, किसी को नहीं छोड़ेगा, ये विज्ञान है, कोई भी नहीं बचा इससे। प्रजल्पा कर रहे हैं पतन निश्चित है, निश्चित, कोई नहीं बचा सकता। तो सावधान हो जाना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम प्रजल्पा ना करें। भागवतम के 11वें स्कंध में बताया गया है कि अगर कोई साधक ये प्रयास कर रहा है कि मैं इंद्रियों को वश में करूं, तो क्या टेस्ट है जिसे हम जान सके कि हमारी इंद्रियां वश में है? तो केवल एक ही टेस्ट है जिसे मालूम चल जाएगा कि इस भक्त की इंद्रियां वश में है, वो क्या है, जीवा पे नियंत्रण। अगर जीवा पे नियंत्रण है इसका मतलब इस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित है, नियंत्रण में है। जीवा पे नियंत्रण नहीं है इसका मतलब इसकी कोई भी इंद्रियों पे इसको संयम नहीं है, बस ये एक टेस्ट है जीवा। ये जीवा इतनी खतरनाक है, देख सकते हैं बड़े से बड़े जो पानी के जहाज होते हैं उनको दिशा दिखाने के लिए कौन सा यंत्र होता है, रडर होता है, और रडर का साइज कितना छोटा सा होता है ना, रडर कोई बहुत बड़ा थोड़ी होता है, रडर छोटा सा होता है जो कि पानी के जहाज को दिशा दिखाता है, और पानी का जहाज कितना बड़ा होता है। इसी ढंग से इस बद्ध जीव को किस दिशा में जाना है सारा निर्भर करता है हम जीवा का कैसा प्रयोग कर रहे हैं। छोटी सी जीवा, 2-3 इंच की जीवा है बस, कैसे इसका उपयोग कर रहे हो, पूरा का पूरा ये जीवन अगला जीवन सब इस जीवा के द्वारा बुक होते हैं। कैसा जीवन चाहिए, कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, सुअर बनना है, या भगवत धाम वापस जाना है, सब इस जीवा पर निर्भर कर रहा है कैसे आप इस जीवा का प्रयोग कर रहे हो। तो अगर निरंतर जप करना है तो फिर प्रजल्पा नहीं, कोई आपके पास चॉइस नहीं है प्रजल्पा करने के लिए। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत संग से बचिए, टेम्परेरी गेम्स के पीछे मत जाइए कि मेरे को उस व्यक्ति से लाभ है तभी मैं उसका संग कर रहा हूं। अरे कोई लाभ नहीं है। रामानुचार्य जी ने बताया कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ है असत्संग, दूसरी तरफ है भूखे शेर का संग, घुस जाओ उसके पिंजरे में भूखे शेर के और मर जाओ, कोई बात नहीं, हरि नाम ले तो वे शरीर त्याग दोगे, बैकुंठ चले जाओगे। लेकिन असत्संग कर लिया तो ये जन्म भी खराब, अगले कई जन्म खराब। तो अंधेपन में नहीं चलना ना, तो ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा दृढ़ता से कि मुझे मुनि बनना है, मौन व्रत का पालन करना है, प्रजल्पा नहीं करना, केवल इस वाणी का प्रयोग करना है कृष्ण के गुणगान के लिए, अन्यथा नहीं, है ना। श्री प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ऐसे जीवा को चलाएंगे तो मेंढक को याद करिए, टर 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 मेंढक करता है, तो अपने काल को, सांप को वो बुला रहा है। तो हम ऐसे फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ करेंगे, टर 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 करेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ी तीव्रता से हम मृत्यु की तरफ प्रगति कर रहे हैं, बहुत ही तीव्रता से। आयुरो हरती वे पुंसान उद्य नस्तो तस्य रितक्षण नीति उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय और अस्त होने से हम सब की आयु का नाश हो रहा है, लेकिन ये नियम उन पे लागू नहीं है जो कि उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं है। आप समझ रहे हैं, अगर हम कृष्ण कथा नहीं कर रहे, उत्तम श्लोक यानी कि कृष्ण का गुणगान नहीं कर रहे, तो प्रतिक्षण हम मर रहे हैं प्रतिक्षण। लेकिन जैसे हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो वो क्षण रुक जाएंगे, वो क्षण रुक जाते हैं, हमारी आयु नहीं घटती है। इसलिए बोला जाता है कि जो टर टर कर रहे हैं वो काल को बुला रहे हैं। तो काल से बचने का एक ही उपाय है कि हम निरंतर कृष्ण के गुणगान में लगे रहें। ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। देखिए हम सब में दृढ़ता की कमी है, सोच के जाते हैं पजल्पा नहीं करेंगे। लेकिन हम पजल्पा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भक्ति में भी आनंद नहीं आ रहा। तो आनंद ढूंढने के लिए कोई इधर उधर की बातें तो करनी ही पड़ेंगे, तो इधर उधर की हम बातें शुरू कर देते हैं। तो एक करता है तो दूसरा उत्साह बढ़ाता है ना, तो उसकी दृढ़ता कमजोर हो जाती है, फिर तीसरा एक और आ जाएगा। तो कई बार हम स्पिरिचुअल पजल्पा भी करते हैं, आध्यात्मिक पजल्पा, उसमें शास्त्रों को कोट करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, आध्यात्मिक पजल्पा करते हुए। नहीं, कृष्ण सब देख रहे हैं। हमें बहुत ही सिंसियरली अपनी वाणी का उपयोग भक्तों के गुणगान में और कृष्ण के गुणगान में करना चाहिए। यह है मुनिव्रता। फिर बताया गया समाहित धिया। समाहित धिया का अर्थ है एकाग्र बुद्धि से पूरे ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप तभी कर पाएंगे जब भक्ति की हरेक विधि का पालन ध्यान पूर्वक करेंगे। ये कोई मशीन नहीं है, यांत्रिक विधि नहीं है कि चलो दो घंटे ध्यान पूर्वक जप करेंगे, गियर शिफ्ट किया अटेंटिव उसमें आगे मोड में, वो ध्यान पूर्वक जप शुरू हो गया। ये मशीन नहीं है। ध्यान पूर्वक जप तभी शुरू होगा, आपकी चेतना तभी एकाग्र होगी जब आपने हर कार्य ध्यान पूर्वक किया हो, ध्यान पूर्वक प्रसाद पाया हो, ध्यान पूर्वक आप नाचे हो, ध्यान पूर्वक अपने प्रभुपाद को फूल अर्पण किए हो, ध्यान पूर्वक अपने प्रणाम किया हो, ध्यान पूर्वक भक्तों का संग किया हो। एक एक चीज ध्यान पूर्वक करनी पड़ेगी। वंदो मोहि सावधान मते, तभी ध्यान पूर्वक जप होगा। इतना आसान नहीं है ध्यान पूर्वक जप करना। एकाग्रता तभी आएगी जब हमारे हर कार्य का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। हिज होलीनेस वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज ने जब सेमिनार लिया था हरिनाम चिंतामणि में, तो उन्होंने बताया था कृष्णा कॉन्शियसनेस की परिभाषा है कि हमेशा अपराधों से सचेत रहें, सावधान रहें, कि किस ढंग का जीवन, कैसा मेरा आचरण है, उससे हम सावधान रहें, तभी ध्यान पूर्वक जप होगा, अन्यथा ध्यान पूर्वक जप नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्येक क्षण में ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी, अप्रमत्ता, अप्रमत्ता होना चाहिए हमें, यानी कि सावधानी पूर्वक। और जो सावधानी पूर्वक नहीं है वो प्रमत्ता यानी कि पागल है। यह मनुष्य जीवन मिला ही है, प्रत्येक क्षण को ध्यान पूर्वक करना है, प्रत्येक क्षण को। कुत्ता बिल्ली सावधान नहीं रह सकते, वो सावधान रहते केवल आहार निद्रा भय मैथुन में बस। लेकिन हमें प्रत्येक क्षण ध्यान पूर्वक रहना है, सावधान पूर्वक, कि क्या ये क्षण मैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूं। प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें अपने आप को सोच, अपने आप को सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, तो तभी हम ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे एकाग्र बुद्धि के साथ। और फिर बोला गया है आद्रता। जो हमें ये हरि नाम प्राप्त हुआ है इसको हमने बहुत आदर पूर्वक स्वीकार करना है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा। ये हरि नाम हमें प्राप्त हुआ है कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते गोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। बहुत बहुत ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद किसी एक भाग्यवान जीव को यह भक्ति लता बीच प्राप्त होता है। इससे बड़ी लॉटरी और नहीं निकल सकती। तो ये जो हमें धन प्राप्त हो गया है, इसी धन की रक्षा कीजिए प्लीज, और किसी धन के पीछे मत भागिए। डोंट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ग्रांटेड। इसको ग्रांटेड मत लीजिए कि प्राप्त तो हो गया। भक्त तो बड़े विनम्र होते हैं, कभी भी चले जाओ स्वीकार कर लेंगे, क्या है हरि नाम ही तो है। नहीं, जब एक बार कृपा छीन ली जाएगी तो फिर हमें दुख होगा, फिर हमें मालूम चलेगा। इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बहुत ही आदर पूर्वक इसको स्वीकार करना चाहिए, बहुत आदर पूर्वक। तो कैसे हम आदर दिखा सकते हैं? गुरु से हमें यह प्राप्त हुआ है तो बहुत आदर पूर्वक। जब तक गुरु को हम आदर नहीं करेंगे तो हरिनाम को कैसे आदर करेंगे? जिस व्यक्ति ने हमें जो उपहार दी है उस व्यक्ति को हम सही आदर नहीं करेंगे तो जो हमने उपहार दिया है उसका भी आदर नहीं करेंगे। हम कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति हमारे लिए उपहार लाया, अगर हम उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो उपहार देके हम कहीं भी दे देते हैं, अपने नौकरों में बांट देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हम बहुत आदर करते हैं, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो हमारे लिए एक फूल भी ले आता है, थोड़ा सा भी उपहार लाता है, तो हम बड़े गर्वित होकर दिखाते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे उपहार दिया है ना। जैसे गुरु महाराज हमें कुछ भी दे रहे हैं, अपने हार गले की हार की माला दे रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि गुरु महाराज ने हमें ये दिया है ना। तो उसी ढंग से जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं उससे जो भी हमें उपहार मिलता है उसका भी हम आदर करेंगे। लेकिन जिस गुरु और वैष्णव के माध्यम से हमें ये हरि नाम मिला, ये भक्ति लता बीज मिला, अगर हम उनका ही सही ढंग से आदर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भक्ति लता बीज जो हरि नाम है उसका भी आदर नहीं करेंगे, तो फिर जप कैसे करेंगे? निरंतर अंतःकरण में कैसे धारण करेंगे? एकाग्र होकर कैसे जप करेंगे? तो ये सब कनेक्टेड है मुख्यतः इस पर कि हमारे गुरु और वैष्णव में कितनी श्रद्धा है, हम उनका कितना आदर करते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन का आधार है। तो हमें वैष्णव और गुरु का पूर्ण रूप से आदर करना चाहिए। वास्तव में आदर शब्द तो बहुत छोटा शब्द है ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमारे इस गुरु के साथ संबंध आदर के संबंध नहीं होने चाहिए, संबंध होना चाहिए प्रेम का। क्योंकि आदर पूर्वक हम सेवा कुछ समय करेंगे, लेकिन प्रेम हमें सब कुछ गुरु को अर्पण करना है। सर्वस्वम गुरुवे ददायत, सब कुछ गुरु को हम तभी अर्पण कर पाएंगे जब गुरु के साथ हमारा प्रेम का संबंध होगा। लेकिन प्रेम के संबंध की शुरुआत आदर से होगी। तो हमने इसको बहुत ही आदर पूर्वक इसका पालन करना है। और जब हरि नाम भी लें तो बहुत आदर पूर्वक हरि नाम लें। तो सबसे जो मुख्य बात है हरि नाम के प्रति आदर दिखाने की, कि हम जब केवल हरि नाम ले रहे हो तो केवल हरि नाम लें, हरि नाम लेते हुए और कुछ बातचीत ना करें, तो हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, अच्छा वो हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, अच्छा वो हो गया, ये हो गया, हरे कृष्ण हाँ प्रभु आ रहा हूँ बस अभी थोड़ी देर में पहुंचा, हरे बोल हरे राम, फोन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ऐसे, है ना। बोले बहुत ही सरल विधि है, सुसुखम कर तुम अव्यय, कुछ भी करते रहो, भक्ति योग है ना, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बताया गया था हमें इसमें कोई नियम स्थान का नियम का कुछ भी नहीं है, हर जगह कर सकते हैं। तो ये हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है। कम से कम इतना तो करें कि हरि नाम करते हुए केवल हरि नाम और कुछ नहीं, और किसी की शरण ग्रहण ना करें। तो ये इतना आदर तो हमें दिखाना चाहिए, है ना। और फिर क्या आदर, जो भी भक्त हरि नाम ले रहा है उसका भी हम आदर करें, और जो भी भक्त हरि नाम के प्रचार में लगा हुआ है उसका भी हम आदर करें। हरि नाम से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सबका हम आदर करें, तभी हम इसका आदर पूर्वक जप कर पाएंगे। कृपया करके हमें ध्यान रखना चाहिए, भक्ति को हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। भक्ति एक जीने का तरीका है, भक्ति केवल एक घंटे दो घंटे का बिजनेस नहीं है, 24 घंटे का जब तक हमारा जीवन है पूरा बिजनेस है। तो उसमें कंपार्टमेंट नहीं बना सकते कि मंदिर में ऐसा व्यवहार, मंदिर से बाहर ऐसा व्यवहार, उसके बाद ऐसा व्यवहार, फिर ऐसा व्यवहार। अलग अलग हमारे रूप हैं, कहीं पे हम बहुत अच्छे हैं, कहीं पे बहुत सख्त हैं, कहीं पे बहुत ही हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मल्टीपल रोल्स नहीं चलेंगे, सरल हृदय के साथ ना। तो सरल हृदय के साथ अपनी चेतना को हमेशा शुद्ध करना है, हमेशा कृष्णा भावना भावित रहना है। तो प्रत्येक जीव को आदर देना है। भक्ति विनोद ठाकुर तो ये कहते हैं कि जब तक आप प्रत्येक जीव को आदर नहीं देंगे आप हरि नाम नहीं ले सकते, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। और किसी भी जीव को आदर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान के एक अंश को आप रिजेक्ट कर रहे हो। भगवान के एक अंश को रिजेक्ट कर रहे हो, भगवान को रिजेक्ट कर रहे हो, फिर उसी भगवान का नाम कैसे आप आदर पूर्वक ले सकते हो। चावल की एक बोरी आई, आपने सैंपल निकाला, उसको रिजेक्ट कर दिया, पूरी बोरी को रिजेक्ट कर दिया। तो प्रत्येक जीव एक कृष्ण का एक सैंपल है, चाहे वो आपकी लेबर हो, चाहे आपका वो डीलर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे घर का नौकर हो। तो अक्सर कई बार ये देखा जाए, पूरा मानने वाली बात नहीं है, कई घरों में पति और पत्नी दोनों ही दीक्षित हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम दीक्षित भक्त हैं। पत्नी यही सोचती रहती है कि ये मेरे पति हैं, पति यही सोचते रहता है कि ये मेरी पत्नी है। तो जो आदर हम एक वैष्णव या वैष्णवी को देना चाहिए वो आदर नहीं देते। जीवे स्वरूपे होवे कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूपे नहीं पति दास पत्नी दास, कृष्ण नित्य दास। पहले हम कृष्ण के दास हैं, उसके बाद ये भौतिक संबंध कर्मों का ऐसा फल होगा कि हम पति पत्नी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और मिलकर कृष्ण और गुरु की सेवा करें। तो हम उतना आदर नहीं देते जितना आदर देना चाहिए, हम उनको वही भौतिक संबंधों से तोलते हैं। तो फिर क्या होगा, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सुने आपने, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। तो ये पांच चीजों का हम ख्याल रखेंगे, निरंतर जप करें, अंतःकरण में धारण करें, दृढ़ता से करें और एकाग्र चित्त से करें और बहुत आदर पूर्वक करें, तो तब ये जो बीज हमें प्राप्त हुआ है ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो पचेतस से कोई शिक्षा दी जा रही है कि मैंने आपको ये स्तुति सुना दी है, अब इस स्तुति का कैसे अभ्यास करना है, ये पांच तरीके हैं। इसी ढंग से श्री प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हम सबको भी स्तुति मिल गई है। वो स्तुति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्तुति हमें प्राप्त हो गई है और इन पांच चीजों का हमने ख्याल रखना है, इन पांच चीजों का ख्याल रखते हुए हमें इसका अभ्यास करना है। तो फिर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि बहुत सरल है भक्ति योग, अगर विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो ये भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा, अत्यंत सरल लगेगा। हमको भक्ति योग सरल क्यों नहीं लग रहा? कि हम इनका पालन नहीं कर रहे, प्रजल्पा भी कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे, विनम्र नहीं है, तो कैसे फिर सरल लगेगा? फिर हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कृष्ण कौन है, मैं कौन, ये क्या है, ये शास्त्र की बातें सच है कि गलत है? फिर ऐसा संदेह उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम अभ्यास सही ढंग से नहीं कर रहे। प्रभुपाद झूठ थोड़ी बोलेंगे, प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी सेल्समैन, है ना, कोई अपना प्रोडक्ट थोड़ी वो बेच रहे हैं कि भक्ति योग सरल होगा, नहीं, ये वास्तव में सरल होगा, हम इसका सही ढंग से पालन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न या टिप्पणी? प्रभु जी का प्रश्न है कि सतयुग में लोगों की बुद्धि विकसित होती थी, तो बुद्धि विकसित थी तो उन्होंने हरि नाम की शरण ग्रहण क्यों नहीं किया? अच्छा प्रश्न है। लेकिन चाहे हम किसी भी युग में हो, इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो भौतिक जगत में अपने आप ही रहना बहुत बड़ी अशुभता है, अमंगलकारी है, बद्ध है ना, झूठा अहंकार, बुद्धि भी है झूठा अहंकार भी है ना। तो जब उनको कोई क्लेश नहीं सता रहे हैं, तो जीव की ये प्राकृतिक स्थिति है कि हर स्थिति में अपने आप को वो उससे आसक्त हो जाता है, जो उसको सुख प्राप्त हो रहे हैं उससे वो आसक्त हो जाता है। तो जो सुख प्राप्त होते हैं उससे आसक्त हो जाता है, तो उसे बुद्धि हर ली जाती है। चलो अच्छी से कुशाग्र बुद्धि होने के बाद भी वो इस बात को समझ नहीं पाते कि कैसे संभव है, क्योंकि सुख है ना आसपास, कैसे संभव है, आयु इतनी बड़ी है, हर तरह सुख ही सुख है, कि केवल ऐसे इसको जीवा को हिलाने से हमें प्राप्त हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। देखिए हम लोगों के लिए हरिनाम लेना ही बहुत बड़ी तपस्या है ना, तभी हम कुछ कर रहे हैं। और कुछ लोग फिर भी अभी ये कहते हैं कि बोलो खाली हरिनाम से थोड़ी हो जाएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा तरीका बताइए कि कुछ करो, कुछ दान पुण्य करो, शनिवार के दिन ये करो, फिर ये पूजा करो, तब उनको कुछ लगता है। अभी भी तो है कलयुग में, हम देख सकते हैं हरिनाम लेने के बाद भी लोगों को लगता है कि कुछ अलग से यज्ञ तो होना ही चाहिए, कुछ अलग से कर्मकांड तो होना ही चाहिए, इससे थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। तो अभी भी हमारी ये स्थिति है। तो सत्युग में देखिए कि सत्युग में सुख ही सुख थे, तब लोगों की क्या स्थिति होगी? शुद्धता से नियमों के पालन की दृढ़ता आती है और दृढ़ता से शुद्धता आती है, है ना। तो भक्ति में भक्ति एब्सोल्यूट है, ये भक्ति की यही एक खासियत है, एब्सोल्यूट है। साधन और साध्य हमेशा एक ही रहते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। कृपा की याचना करेंगे तो शक्ति मिलेगी, नियमों का पालन कर पाएंगे, नियमों का पालन कर पाएंगे शुद्धता आएगी तो दृढ़ता और बढ़ेगी, तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। शक्ति है, दुश्मन नहीं है माता जी, बहुत बड़ी सहायक है। हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं? इन्हीं माया देवी कृपा से मार खा के आए हैं, खूब मार पड़ी है हम सबको, तब हम बोले चलो मान लेते हैं भगवान की बात। जब तक मार नहीं पड़ी तो हम भी घूमते थे ऐसे, कौन भगवान देखी जाएगी, मैं भी तो हूं, अगर भगवान है तो मैं भी तो हूं। जब खूब मार पड़ी उसके बाद फिर झुके हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं झुकने का। तो माया देवी विशेष कृपा है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि मैं शायद झुके रहो, विनम्रता का अर्थ है गुरु के आदेशों का पालन करना। बस अर्जुन तीर चला रहे थे लेकिन विनम्र थे, पहले वो विनम्र नहीं थे, पहले वो अपना मत दे रहे थे कि मैं वन में जाऊंगा, मैं नहीं लड़ता, जाओ। खूब उन्होंने कृष्ण से वार्तालाप की, मैं नहीं लड़ूंगा, तो विनम्र थोड़ी थे। बाद में बोला कृष्ण का, लड़ो करिष्ये वचनम तवा, ये विनम्रता है। तो गुरु के आदेश में जाके बिजनेस करो तो खूब बिजनेस करो, और बिजनेस में लड़ाई करने पर लड़ाई भी करो, लेकिन चेतना क्या होनी चाहिए कि जो धन कमाऊंगा गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, है ना? समझे बात को? विनम्रता केवल बाहरी दिखावा नहीं है, यह हमारी चेतना की एक स्थिति है कि गुरु के आदेशों का हर स्थिति में पालन करें। मेरा कोई मत नहीं है, विनम्रता का अर्थ है कि मेरे मत का कोई महत्व नहीं है, केवल गुरु साधु और शास्त्र का महत्व जो मत है वही महत्वपूर्ण है, ये विनम्रता। बहुत अच्छा प्रश्न है, वैष्णव की सेवा किस ढंग से की जाए? वैष्णव की सेवा के कई तरीके हैं, है ना? भक्ति असीमित है, सेवा भी असीमित है, लेकिन हम लोग बद हैं तो हमें तरीके नजर नहीं आते हैं, है ना? बुरा मानने की बात, हम सबकी यही स्थिति है। लेकिन अगर इस वही हम चेतना में आ जाएं कि मुझे वैष्णवों की सेवा करनी है, अगर हम भगवान और गुरु से प्रार्थना करें कि कृपया करके आप मुझे वैष्णवों की सेवा दें, तो आप देखेंगे कि आप प्रत्येक कार्य वैष्णवों की सेवा के रूप में कर सकते हैं, है ना? वैष्णवों की सेवा सबसे पहले की जा सकती है कि जो वैष्णव जिस मिशन में लगे हैं, जो उनको गुरु से आज्ञा प्राप्त है, तो हम उनकी पूर्ण रूप से मदद करें कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सके, और फिर हम उनकी बापू सेवा भी कर सकते हैं। और देखिए, हम सब वास्तव में वैष्णव सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। अगर हम जप भी कर रहे हैं तो एक तरीके से वैष्णव सेवा, क्योंकि गुरु के आदेश है ना? चार नियमों का पालन करें तो ये भी एक वैष्णव सेवा, गुरु के आदेश है ना? मंगल आरती भी आ रहे हैं, गुरु के आदेश है ना? भागवत श्रवण भी कर रहे हैं तो वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। जो किसी भी वैष्णव से हम सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने, विनम्रता पूर्वक सुने, है ना? हर तरह के मानसिक तर्कों को साथ में पीछे रखें कि ये तो ऐसे थे, ये वैसे थे, सब पीछे रख के विनम्रता पूर्वक सुने, तो वैष्णव की सेवा है। तो देखा जाएगा तो हमारा पूरा जीवन हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य वैष्णव सेवा के रूप में कर सकते हैं। चेतना को लाना है, हमें ढूंढने चाहिए अवसर कि कैसे मैं वैष्णव में कुछ भी सहयोग कर सकूं कि ये भक्ति में आगे बढ़े। किसी भी नए भक्त से हम बात कर रहे हैं तो हमें इस चेतना में होना चाहिए कि कैसे इसका उत्साह बढ़ाऊं, है ना? किसी अपने से वरिष्ठ भक्त से बात कर रहे हैं तो ये चेतना होनी चाहिए कि मैं कैसे इनकी सेवा कर सकूं, कैसे इन्होंने मेरे पर जो कृपा की है मैं इनके लिए और क्या कर सकूं, कि इनकी कृपा से ही मैं भक्ति में जुड़ा हुआ हूं, क्या करूं इनके लिए, तो इनको किसी चीज की आवश्यकता है, या मेरे कुछ संदेह हैं, मैं कैसे इनको दूर करूं, कैसे इनका गुणगान करूं, है ना? और जो हमारे बराबर के वैष्णव हैं तो उससे हमें यह करना चाहिए कि इनका उत्साह बना रहे, इंद्रदित्य के प्रति हमारी रुचि रहती है, वो रुचि कैसे कम हो, कैसे हम एक दूसरे को और उत्साहित रखें, मिलकर हम गुरु की सेवा में जुड़े। तो अगर हम मौके ढूंढेंगे तो बहुत से मौके मिलेंगे वैष्णव सेवा करने के। तो उस बस चेतना को लाने की बात है। हाँ, वैष्णव को अग्नि के समान बताया गया है कि बहुत नजदीक जाना भी खतरनाक है और बहुत दूर रहना भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें संग करना तो सीखना ही चाहिए कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, यह हमें वरिष्ठ वैष्णवों से परामर्श लेकर उसी हिसाब से फिर संग करना चाहिए। बिना संग के तो फिर हम खत्म हो जाएंगे।
एडवांसमेंट का मतलब बताइए, हमारी श्रद्धा कितनी बढ़ रही है अभी, हमारा ये कांस्टेंट चेक करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही?
श्रद्धा बढ़ने का सबसे सरल तरीका यही है कि कितना समय लगता है हमें आज्ञा का पालन करने में, कितना समय लगता है, और सबसे बड़ी श्रद्धा तो ये वजह पड़ जाएगी कि बिना आज्ञा के ही हम गुरु की इच्छा को समझ जाएंगे, वो उच्चतम स्थिति है। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्शन यही देखा जाएगा ना, मेरे आप में बहुत श्रद्धा है, मेरे श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे, उसके लिए फिर कई तरह के बहाने हैं हमारे पास। तो अगर वास्तव में श्रद्धा है तो जो आज्ञा देगी तुरंत पालन, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम गुरु के मनोभीष्ट को समझेंगे, वैष्णव के मनोभीष्ट को समझेंगे और तुरंत उनका पालन करेंगे। ठीक है, वास्तव में स्पिरिचुअल पजलपा होता ही नहीं है, ये कैसे स्लैंग की तरह यूज होता है वर्ड। पजलपा कभी स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें मैंने ऐसे बोला कि हम भक्तों में आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसे बोल देते हैं स्पिरिचुअल पजलपा। ऐसा पजलपा इज मंडेन ऑनली, पजलपा कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको कवरिंग देते हैं स्पिरिचुअलाइज करके, कि श्लोकों को कोट करेंगे, वैष्णव सॉन्ग कोट करेंगे, एक दूसरे को महाभागवत बोलेंगे, चरणों की धूल लेंगे, और इस तरह के हम जब मजाक करते हैं तो बात है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, कंथा श्रीमद भागवतम की, पिताई गो प्रेम अनन्य। अनंत कोटि वैष्णव की जय।